श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 41 दिनांक 4 अप्रैल 2015 स्पीकर कमलचन प्रभु
येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन्वैष्णवांश्च श्रीगुरुं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सामदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा इस श्लोक में शरद ऋतु का वर्णन हुआ है। जैसे बारिश का मौसम समाप्त हो गया, उसके बाद का जो मौसम है उस समय पानी नहीं रहता है, पानी बरसता नहीं है, तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है जैसे बारिश के मौसम में जो भी पानी बरसा है उसको बांध के रखने के लिए एक बांध को बांधा जाता है ताकि पानी बाहर ना जाए। खास करके धान का खेत होता है वो उसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता होता है। गेहूँ ज्वार इस खेतों के लिए पानी की इतना आवश्यकता नहीं होता है। जो भी राइस क्रॉप होता है उसके अंदर जब राइस उगता है वो प्राय पूरा पानी के अंदर डूबा रहना चाहिए, खाली उसका जो ऊपर का जो बाग है वो बाहर वही दिखाई पड़ता है। अगर वो पानी निकल जाता है तो खेत में धान इतना अच्छा नहीं आता है। जो भी धान का खेत किए होंगे देखे होंगे उनको मालूम है ये बात। तो उसी प्रकार जिस प्रकार किसान एक बांध बना के रखता है पानी बाहर नहीं जाए, उसी प्रकार श्लोक के वर्णन को यथा प्राणी उसी प्रकार प्राणों की तुलना किया गया है जल के साथ। उसको क्या करता है कि ज्ञानम तम निरोधे न योगिन्हा, तो ज्ञानम तद निरोधे न योगिन्हा। तद का अर्थ इधर इंद्रियों के द्वारा निरोधेना, इंद्रिय कंट्रोल, तद निरोधेना का अर्थ इंद्रियों का नियंत्रण के द्वारा। वो क्या करता है अपने हृदय में जो भगवत चेतना प्राप्त हो चुकी है, ज्ञान है ना, मतलब भगवत चेतना जो प्राप्त हो चुकी है उसको वो संभाल के रखता है। ऐसा कहा गया है हमारी चेतना में जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है वो इंद्रियों के द्वारा बह जाता है। हमारा अगर चेतना को एक मटके के रूप में तुलना किया जाए, ये मटका जो है उसके अंदर 5 छेद है, ये 5 इंद्रियां जो है वो छेद के बराबर है। अगर इस इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, जिस प्रकार मटके के अंदर जितना ही पानी भरते जाओ और उसको छेद को बंद नहीं करेंगे जिस प्रकार सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों हमारी चेतना में जो भी कृष्ण भावना को हमने भरा, ज्ञान को जितने ही भरा शास्त्रों के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, हमारी साधु संगति के द्वारा जो भी हमने प्राप्त किया वो सब हम हो जाते हैं, सब बह जाता है। जैसे मटके से पानी इंद्रिय वो अपने छेद में से बह जाता है। इसलिए शास्त्रों में खास करके भगवद गीता में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पुष्ट किया गया है। भगवान कहते हैं कि परंदृष्ट्वा निवर्तते, परंदृष्ट्वा निवर्तते का अर्थ क्या है? जब तक हम ऊपर की चीज़ को स्वाद नहीं लेंगे तब तक नीचे का जो स्वाद है वो नहीं जाएगा। देखिए अगर कोई भौतिकवादी है, जय श्री श्रादा गिरिधारे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, कोई भौतिकवादी है इंद्रिय तृप्ति कर रहा है उसको कोई समस्या नहीं होती है। और जो आध्यात्म उन्नत है, जो परम दृष्टवा भगवत प्रेम में लीन हो चुका है या भगवत प्रेम को आस्वादन कर रहा है उसको ही कोई समस्या नहीं है। दोनों के बीच में है ना उनके लोगों की समस्या है। क्या समस्या है? एक और इंद्रियों के प्रति भोग के प्रति आसक्ति है, दूसरा और जो है कृष्ण भक्ति करने का प्रयास भी चल रहा है। तो इसलिए भगवद गीता में उन्होंने कहा कि एक और हमको क्या करना चाहिए, भगवान के जो दिव्य प्रेम है, जो लीलाएं हैं, गुण हैं, उनको आस्वादन करने का प्रयास करना चाहिए, उनका गुणकथा को सुनना चाहिए और उनके नाम को जप करना चाहिए। ये सब बातें कहा गया है, ये करना चाहिए। दूसरी ओर हमारे इंद्रियों के प्रति इंद्रिय तृप्ति की ओर आसक्ति गया नहीं है तो क्या करें? अगर उसकी ओर अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जो भी हमने जो भक्ति को किया है, कार्य किया है, साधना किया है, वो सब निकल जाएगा। इसलिए कहा गया है रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य रसो अपि अस्य, रस का अर्थ क्या, अभी भी इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति है, आसक्ति होने पर भी क्या करो, रसवर्जम उसे वर्जित रहो, उसे दूर रहो। इसलिए दोनों में ध्यान देना चाहिए भक्त को। कुछ लोग कहते हैं बस भक्ति करते जो अपने आप इंद्रिय नियंत्रण में हो जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं देखो इंद्रिय नियंत्रण करो बाद में भक्ति करो। ये दो विपरीत बातें हैं, दोनों को साथ साथ में करना चाहिए। एक है भगवत ज्ञान भगवत भक्ति के कार्यकलापों को करना, साधना, और साधना आप कितना दिन करोगे, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा करोगे, उसके बाद का समय जो है वो इंद्रियों को नियंत्रण करने का समय है। और इंद्रियों को नियंत्रण करना कैसे संभव है, जब आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, खासकर के भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, साधन भक्ति के विषय में कहते हुए कहा गया, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, साधन भक्ति के विषय में कहते हुए कहा गया है कि साधन भक्ति कृतियस्य भवेत साध्यः साधनाभिधाः, जो इंद्रियों के द्वारा किया गया है, दूसरा भाव को उद्देश्य में रखते हुए किया गया है, तीसरा गुरु के नियंत्रण में या गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के नियंत्रण में किया गया है। तीन चीज जो है साधना का डेफिनेशन है साधन भक्ति का। सबसे पहला क्या है कि कृति मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा, कर्मणा मनसा वाचा, इन तीनों के द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति करेंगे बस ऐसे एक जगह कोने में बैठ जाएंगे भगवान का स्मरण करते रहेंगे, ये साधन भक्ति नहीं माना गया है। साधन भक्ति उसको कहा गया है जो इंद्रियों के द्वारा किया गया उसको साधन भक्ति कहा गया है। और दूसरा क्या है, भाव को उद्देश्य में रखते हुए किया गया है। और ये भाव को उद्देश्य में रखते हुए किया गया तो इसको कैसे समझे, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में कहा गया, रामानंद राय ने कहा चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भक्ति रसभाविता भक्ति क्रियताम इति कुतो लभ्यते त्रलोल्यम अभिमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। तो ये जो भाव साधना भक्ति भाव भक्ति में कैसे परिणित होता है, तो केवल साधना करते जाएंगे कृति से भवित साध्य भाव प्रकट नहीं होगा। साधना करते करते उसके अंदर एक ऐसा मसाला डालना होगा जिसका नाम है लोभ, कृष्ण कथा श्रवण करने का लोभ, भागवत का श्रवण करने का लोभ। ये जब तक ये लोभ नामक ये मसाला नहीं है तब तक ये जो साधना जो है वो भाव में कभी परिणित नहीं होगा। और उस भक्त को जो साधन कर रहा है, साधक है, हमेशा ध्यान में रखना होगा कब मुझे भगवान के प्रति भावना प्रकट होगी, कब मुझे भाव प्राप्त होगा। जब तक ये लालसा नहीं है तब तक वो साधना करते रहे करते रहेंगे, तब तक उनको भाव प्रकट नहीं होगा। बाद में ये जो गुरु के नियंत्रण में आदेश के अनुसार कार्य करना यानी उनकी सेवा के लिए कार्य करना, ये साधन भक्ति का डेफिनेशन है। तो ये साधन भक्ति का डेफिनेशन भले दिया गया है और एक श्लोक को कोट किया गया भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी आदि कहते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु और विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर येतयोर एव किंकरः। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान का स्मरण करो हम बोलते हैं, लेकिन जितना भगवान का स्मरण करना महत्वपूर्ण है, भगवान का विस्मृति ना हो इसके ऊपर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चेतना है आधा जो है कृष्ण के चरण कमलों में है, आधा अभी भी अटका हुआ है अनेकों अनेकों बहुत ही इंद्रिय तृप्तियों में आसक्तियों में। तो ये बड़ा समस्याजनक समय है। तो इसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने दोनों बात कहा, कृष्ण का स्मरण करो और उसको कभी मत भूलो। जितने भी नियम कानून हैं ये एतयोर एव किंकर आए, दो प्रिंसिपल्स है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, इन दोनों के किंकर है। मान लो कोई एकादशी पालन कर रहा है तो एकादशी किस उद्देश्य से पालन करना चाहिए? ताकि कृष्ण का कभी स्मरण विस्मृति ना हो और कृष्ण का हमेशा स्मरण हो। तो ये दो एक ही जैसा लग सकता है, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का कभी हमेशा स्मरण करो और कृष्ण का कभी मत भूलो। हो सकता ऐसा लग सकता है कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है, दोनों में अलग है। कृष्ण का स्मरण करना है वो मटके में पानी डालने के बराबर है, हमारी चेतना नामक जो मटका है उसके अंदर पानी डालने के बराबर है। और कृष्ण को कभी मत भूलो वो मटके के अंदर छेद को बंद करने के बराबर है। दोनों साइमल्टेनियसली करना होगा, दोनों साथ साथ में करना होगा। ऐसा नहीं कि मटका भरेंगे बाद में देखेंगे छेद बंद करेंगे, नहीं, आप खाली छेद बंद करेंगे मटका नहीं भरेंगे, वो भी नहीं चलने वाला है। आप उसके अंदर पानी भरते भरते क्या करना होगा, मटके के अंदर छेद भरना होगा। उसी प्रकार हमारा चेतना नामक मटके में क्या है, अनियंत्रित इंद्रियां, अनकंट्रोल्ड सेंसेस और छेद है। तो इसको बंद करने का अर्थ क्या है, इंद्रियों को नियंत्रित करना, वो कैसे संभव है? तो इसके लिए हम हमारे लिए आचार्य ने दो विधियां हमको दिया है। एक विधि है जिसका नाम है भागवत विधि, दूसरा विधि है जिसका नाम है पंचरात्रिक विधि। भागवत विधि वो है जिसके द्वारा हमारे चेतना में कृष्ण भक्ति को भरा जा रहा है, जैसे मटके में पानी भरने का विधि है। वो है सुबह जल्दी उठना, जप करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, जप करना और भागवत पढ़ना, ये दो ही चीज़ है भागवत विधि, इसको ही भागवत विधि कहा जाता है। यानी नियमित स्मरण न काला, इसका कोई नियम कानून नहीं है स्मरण करने की, इसको भागवत विधि कहा गया है। तो ये चेतना के अंदर भरने की बराबर है, पानी भरने की बराबर है, कृष्ण भक्ति भरने की बराबर है। अभी ये जो पंचरात्रिक विधि है, भगवान की अर्च वगैरह का पूजा है या मंदिर बनाने का कार्य है, भगवान के लिए सब्जी लाने का कार्य है, ग्रंथों का वितरण करने का कार्य हो, या मंदिर को मैनेज करने की कार्य क्यों ना हो, या मंदिर धोने की कार्य क्यों ना हो, ये जितने भी कार्य है जो कृति यानी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इसको पंचरात्रिक विधि कहा गया है। हम लोग सोचते हैं खाली घंटी बजाना और आरती करना ही पूजा है, नहीं, कुकिंग करना भी पूजा है, सब्जी लाना भी पूजा है, भगवान की मंदिर चलाने के लिए दान एकत्रित करना, लाइफ मेंबरशिप भी पूजा है, क्योंकि जब तक आप दान एकत्रित नहीं करोगे कैसे पूजा का सामान कैसे लाओगे। यानी जितने भी कार्य है जो प्रैक्टिकल सर्विस बोलते हैं इस कार में, वो सब पंचरात्रिक विधि है। तो ये पंचरात्रिक विधि को अच्छी तरह से पालन करने के द्वारा हमारे इंद्रियां नियंत्रण में हो जाते हैं। क्यों नियंत्रण में होते हैं? वेरी नेचुरल। आप अगर भगवान की सेवा में लगे रहोगे, दो चीज़ें होता है, एक तो प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, एक तो समय ही नहीं इंद्रिय तृप्ति का, दूसरी बात क्या है, आपको भगवान की कृपा मिलता है। भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो इंद्रियों के ईश्वर है, ऋषि की ईशा, ऋषि का ईशा। तो भगवान की कृपा से ही हमारे इंद्रियां नियंत्रण में हो सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियां हम अपने बलबूते करने जाएंगे, नियंत्रण करने जाएंगे भक्ति के सहारे के बिना। तो भगवान भगवत में कहते हैं जाए तो विषयान तुम से संगत से शुभ जाए थे। अगर विषयों के ऊपर कोई ध्यान करता है, नहीं चाहिए करके भी ध्यान करता है ना, जिससे दूर रहना है करके भी ध्यान करता है, तो उसका निश्चित रूप से पतन होगा। क्योंकि ध्यान तो कर ही रहा है। देखो मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, कोई 24 घंटा सोच रहा है मैं स्त्री से दूर रहना चाहता हूँ, मैं स्त्री से दूर रहना चाहता हूँ, तो क्या होगा उसका? हाँ, तो उसका पतन होगा निश्चित रूप में। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने जो श्लोक बताया है, ध्याय तो विषयान मम संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो द्वोत सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिवत भ्रमा, स्मृति भ्रमश्चात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ये दो श्लोक को भगवान ने किसके लिए बताया है? प्राय भक्त लोग वर्णन करते हैं ये दो श्लोक जो है भौतिकवादियों को वर्णन करने वाला श्लोक है, गलत है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने सूत्र कहा ये दो श्लोक वैसे आध्यात्मिकवादियों के लिए भगवान ने कहा जो कृष्ण भक्ति के बिना इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भौतिकवादियों का इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास कर बात ही नहीं कर, क्योंकि वो इंद्रिया तो ऑलरेडी माया में डूबे हुए हैं। तो ये ध्याय तो विषयान पुंसा, ये लगता है कि ये आजकल की भौतिकवादियों को वर्णन करने वाला श्लोक है, वो नहीं है। वो श्लोक उस प्रकार के योगी हैं, उस प्रकार के लोगों का है, उस प्रकार की तथाकथित आध्यात्मिकवादियों का है जो कृष्ण के सहारे के बिना, कृष्ण भक्ति का सहारे के बिना अपने बलबूते इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, क्यों उन लोगों के लिए है। निश्चित रूप में आज नहीं तो कल उनका पतन होने वाला है। बड़े बड़े इतिहास है, प्रभुपाद उदास जैसे उदाहरण देते विश्वामित्र का उस श्लोक में। विश्वामित्र बहुत प्रयास किया कृष्ण भक्ति के और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, नहीं हो पाया। कितना प्रयास किया, 10,000 साल एक बार, और एक 10,000 साल और 1,000 साल, 4 बार विश्वामित्र का हुआ। देखिए उस दूसरी और अम्बरीश महाराज इतने भोग ऐश्वर्य के बीच में रहने वाले महाराज, हाँ राजा है वो, सभी मन कृष्ण पदारविंद, और कृष्ण के लिए ही सारे इंद्रियों को उन्होंने लगाया, मन से लेके शरीर से लेके हाथ से लेकर और हरे बंदर मर्जनादिशु, हाँ ये सब कार्यों की वजह से क्या हुआ, उत्तम श्लोक जनाश्रयारति ही, अपने उत्तम श्लोक जनाश्रयारति ही भगवान के प्रति उनका रति प्रकट हुआ। इसलिए आचार्यों ने हमको जो प्रोग्राम दिया है, श्री प्रभुपाद जी ने जो प्रोग्राम दिया वो परफेक्ट प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम। सैंडविच आपने सुना होगा कि नहीं, ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे एक ब्रेड रहता है, बीच में जो है मक्खन रहता है, इसको सैंडविच प्रोग्राम कहते हैं। सुबह का जो कार्यक्रम है और शाम का जो कार्यक्रम है उसको भागवत विधि कहा गया है, और बीच वाला जो समय है वो पंचरात्रि विधि कहा गया है, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे चेतना में क्या कर रहे हैं वो कृष्ण भक्ति को भर रहे हैं, और वो भरा हुआ जो कृष्ण भक्ति है हमारी चेतना में रहे उसके लिए हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए पंचरात्रि विधि को हम अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। अभी इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, वो है उस बांध को बड़े दृढ़ता से बांधता है। अभी ये सब पिछले श्लोक में मैंने उदाहरण दिया था आपको, या ये बात बताया था कि लोगों को ये सब बातें समझाओ तो भी समझ में नहीं आता है। मुंबई में रहने वालों को मालूम नहीं खेत क्या होता है, बांध क्या होता है, पानी क्या होता है, धान क्या होता है, चावल कहाँ मिलता है, बिग बाजार में मिलता है। उनको इतना ही मालूम है, उनको ये नहीं मालूम कि चावल कैसे उगता है, कौन से समय में उसको बीज डाला जाता है, कैसे उसको करते हैं, और सारे बीज को एक बार डालने के बाद जैसे उगता है तो उसको निकाल के गांठ बांध के रखते हैं, बाद में उसको रेगुलेटेडली अलग अलग करते हैं। तो मैं एक बार धान कैसे उगाते हैं उसके ऊपर कुछ बताया था कुछ बच्चों को, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या कैसे उगता है, क्या होता है, उसको पानी होता है, वो दे डोंट नो। खास करके जब बांध बांधने की बात होती है, बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, बांध बहुत ढीला हो जाता है और किसान जो है वो जा नहीं सकता है, क्योंकि इतना पानी रहता है, बारिश बरसता रहता है, कभी टूट जाता है। लेकिन जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है उस समय सबसे ज़्यादा काम किसान का रहता है, सबसे बड़ा काम यही है बांध को अच्छी तरह से बांध के रखना। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया, खुल गया, तो समझ लेना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, पानी पूरा ऐसा बह जाता है। इससे ऊंचा जमीन थोड़ा सा ऊंचा लेवल पे रहता है, वो नीचे लेवल में जितने भी गटर जैसे होते हैं उसके अंदर पानी गिर जाता है, निकल जाता है। कभी कभी रात को समय एक को रखते हैं देखने के लिए, बांध को बराबर बांध टूटा तो नहीं ना करके। तो कभी कभी रात को भी न्यूज़ आता है ना, किसान लोग भागते हैं, भाग के उसको आग वाग लगा के पूरा अच्छा सा बांध करते हैं। तो ये दृढ़ता से बांधा गया है बांध, जैसे दृढ़ सेतु भी शब्द इस्तेमाल किया दृढ़, उसी प्रकार दृढ़ता से हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मौका देंगे वो पानी निकल जाता है। हमारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अशोक ध्रुव दया मूर्ति को मालूम है, पता नहीं कहाँ से लीक हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हाँ, पानी ऐसी चीज़ है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है बाहर निकलने के लिए। उसी प्रकार हमारी चेतना में जो कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, अगर थोड़ी सी मौका मिल जाए वो कहाँ से कहाँ का चीज़ कहाँ निकल जाते किसी को नहीं मालूम, उसलिए दृढ़ता से उसको बांध के रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अगर लाइटली ले लें, थोड़ा सा भी छूट दे, विपश्चित इंद्रियाणि प्रवत्तीनि हरन्ति प्रसवम मनः, भगवद्गीता भगवान कहते हैं कि विपश्चित, बड़े बड़े ज्ञानी भी क्यों ना व्यक्ति को, बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी क्यों ना हो, इंद्रियाणि प्रमत्तीनि, भगवान ने कहा ये शब्द प्रमत्तीनि मतलब बहुत प्रमत्त है, बहुत शक्तिशाली है। तो क्या होता है, हरन्ति प्रसवम मनः, इसी बात को कहा गया श्लोक में। इधर ये जो शब्द यह चेतना कहा गया इधर, लेकिन अब उधर उस श्लोक में भगवान ने मनः शब्द इस्तेमाल किया, प्रसन्ति प्राणेभ्यः प्राण करके वर्णन किया गया इधर, तो उधर मनः मन का वर्णन किया, क्योंकि प्राण वो है जो आत्मा को या चेतना को मन के साथ, मन को इंद्रियों के साथ, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ जो जोड़ने वाला जो चीज़ है ना, उसको प्राण कहा गया है। इसलिए हमारे प्राण जो है हरंती प्रसवम मनः, प्रसवम मनः मन को हरने वाला है इंद्रिया, इसलिए बहुत संभाल के रहना चाहिए, दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कृतियस्य, कृतिय मतलब हमारे इंद्रियों के द्वारा किया गया जो कार्य है, साधना में स्थित रहना। दूसरा क्या है, भाव को उद्देश्य में रखते हुए कार्य करना, ये दोनों जरूरी है। भाव का इधर अर्थ है कि लोभ रहना, भाव नहीं है लेकिन कब आएगा ये, इसका लोभ ही होना, उसको ही भाव कहा गया है। वैसे भाव भक्ति प्रकट नहीं हुआ, लेकिन भाव भक्ति कब प्रकट होगा, उसको प्राप्त करने का लोभ भी एक प्रकार का भाव है, वो साधना की स्तर का भाव है, साधना की स्तर का राग है। तो ये एक बड़ा टेक्नोलॉजी है। तिलशील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तरीके से संस्था को स्थापना किया कि स्वाभाविक तरीके से अगर कोई व्यक्ति प्रोग्राम को पालन करता है, जो भी प्रोग्राम दिया गया है, सुबह का प्रोग्राम, शाम का प्रोग्राम, दोपहर को भगवान की सेवा करने की जो प्रोग्राम है, तो उनको स्वाभाविक तरीके से ये ऑटोमेटिकली पालन हो रहा है। इट्स वेरी स्ट्रांग प्रोग्राम, इट्स लाइक ए फोर्ट। तो ये इस श्लोक का मुख्य चीज़ है। इसलिए लास्ट लाइन में लिखा गया, प्रभुपाद जी का एक कोटेशन दिया हुआ है, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में जो लिखते हैं उसी को इधर रजानंद महाराज ने लिखा इधर, Unless one is able to control the senses and engage them in the transcendental loving service of Mukunda, there is no possibility of salvation. जब तक हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए नियंत्रण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि नियंत्रण करेंगे, भगवान की सेवा में लगाते हुए नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक कोई संभावना नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का, सेल्वेशन कोई संभावना नहीं है। तो इन छोटी सी कुछ बातों को हमने अभी चर्चा किया श्लोक में। आज वंशीवर्धन ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव दिवस है और श्री कृष्ण रस यात्रा है और बलराम जी का रास लीला का भी शुरू है, शारदीय रस और बलराम रस यात्रा, ये चार के साथ साथ में और एक महत्वपूर्ण है, बलराम हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, हनुमान जयंती। तो आज इसके ऊपर थोड़ा दो बातें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बलराम जी का जो रासलीला है, बलराम जी 2 महीना गोकुल में रुके, उस समय उन्होंने रासलीला किया, कृष्ण का रासलीला के साथ साथ में और एक रासलीला है, बलराम जी का रासलीला। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए, बलराम जी का रासलीला उन गोपियों के साथ हुआ था जो गोपियां कृष्ण के रास्ते में भाग नहीं लिए थे, बलराम जी का गोपियों का सेट कुछ अलग ही है। तो ये लीला हुई थी राम घाट के पास, वृंदावन में जो गए होंगे तो जानते होंगे राम घाट में ये लीला होती है, राम घाट। तो ये जो रास का ज़्यादा आपको आचार्यों में के द्वारा इतना ज़्यादा टीका प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब रास लीला करने के लिए उनको यमुना में रास करना था, लेकिन कृष्ण यमुना के अंदर में जाके रास करते थे, लेकिन अभी बलराम जी को ऐसा लगा मैं जहाँ खड़ा उधर यमुना आना चाहिए, तो यमुना को बुलाया आए नहीं। तो उन्हें क्या किया, अपने हल से यमुना को ऐसा बुलाया, तब यमुना देवी जो है उधर बहुत सारे धाराओं में बहती हैं, उधर कृष्ण ने बलराम जी ने रास किया। बलराम जी का यमुना भले कृष्ण की पटरानी है, ऐसे कहा बलराम जी उनके साथ थोड़ा साकी का संबंध है, इसकी वजह से वो जब जो मित्रता होती है उस पर मित्रता में थोड़ा सा जोर जबरदस्ती किया जा सकता है मित्रता में। तो बलराम जी का रासलीला का भी इसी महीने में हुआ, बड़े सुंदर रास हुआ, क्योंकि कुछ गोपियों का ऐसी भाव रहता है मुझे हमको बलराम जी को प्राप्त करना है, बलराम जी के साथ माधुरी का संबंध है। वारुणी नामक ये जो बेवरेज है वो दिव्य प्रकार के मधु है, उसको बलराम जी पीते हैं, और सुंदर रास का वर्णन भागवत में हुआ है और एकाध ग्रंथ में हुआ है, लेकिन ज़्यादा वर्णन आपको ये रास के बारे में प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण का ये जो रास है जो शारदीय जो रास है, नहीं अभी वसंत, सॉरी वसंत रास जो है, तो ये रासलीला में जो शरद पूर्णिमा का जो रासलीला में अंतर है, भागवत में जिस रासलीला का वर्णन है वो शरद पूर्णिमा का रासलीला, उसके अंदर हर प्रकार की गोपियाँ थी, सारे प्रकार की, ऑल द गोपीज टुक पार्ट, जो भी साधन सिद्ध है, ऋषिचर्य हैं, देवचर्य, सब लोगों ने भाग लिया। लेकिन अभी इस मौसम में होने वाला जो रास है उसमें केवल कृष्ण जो है अपने जो नित्य सिद्ध पार्षद है उनके उन गोपियों के साथ ही वो लीला करते हैं। वैसे ज़्यादा भागवत में इसके बारे में वर्णन है, खाली एक दो श्लोक में वर्णन है, लेकिन इसका शुरुआत इस प्रकार होता है। अभी उसके बाद तीसरा है वंशीवदन ठाकुर। वंशीवदन ठाकुर कोई और नहीं है, वो भगवान की वंशी के ही अवतार है। ही इज़ अ इनकारनेशन ऑफ फ्लूट ऑफ कृष्णा। आप सबको मालूम है गोपियों ने वंशी को बहुत स्तुतियाँ किया, कभी कभी कुछ गोपियाँ वंशी को देख के ईर्ष्या करती है, हमेशा ऊँटों के पास रहता है, कृष्ण के ऊँटों को रसास्वादन कर रहा है वंशी, पता नहीं बम्बू है, बम्बू का कितना, बम्बू को देख के तो बम्बू से ही वंशी बनता है ना, बम्बू को देख के बोलते हैं देखो क्या तुम्हारा कितना सौभाग्य है, हमको तो कभी का शायद कभी कभी मौका मिलता है, ये हमेशा ऊँटों के साथ में रहते हैं। तो इसलिए वंशीवदन ठाकुर वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़े भक्त बने। वंशीवदन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का अंतरंगिक संगी हैं, और वो ऐसे संगी हैं, महाप्रभु को ऐसा लगा कि एक व्यक्ति ऐसे है जिनको मैं बता नहीं सकता कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, आई कैन नॉट टेल। महाप्रभु ने संन्यास देने के बाद वंशीवदन ठाकुर महाप्रभु के विरह में वो बहुत बहुत गीतों की रचना किया। महाप्रभु स्वयं कौन है, विरह स्वरूप है, विरह भक्ति को सिखाने के लिए आए, कृष्ण विरह को सिखाने के लिए वही चे कृष्ण राधारानी का रूप धारण करके वही चैतन्य महाप्रभु है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु विरह के स्वरूप है, तो उस विरह के स्वरूप का विरह क्या होगा, इसको वर्णन करने वाले हैं वंशीवदन ठाकुर अपने भजन में। वंशीवदन ठाकुर वो विष्णुप्रिया और सची माँ उनकी खूब सेवा किया, और विष्णुप्रिया देवी भी महाप्रभु का विरह को अनुभव करते हुए अपना पूरा जीवन महाद्वीप में बिठाया। इसलिए ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि महाप्रभु विरह के स्वरूप है, सारे जगत को उन्हें सिखाया, क्या सिखाया, कृष्ण का विरह भक्ति होता क्या है, लेकिन विष्णुप्रिया देवी और वंशीवदन ठाकुर ये दोनों ने हमको सिखाया विरह के स्वरूप के प्रति विरह होता क्या, वो सिखाया। तो और जगह वर्णन किया गया है, महाप्रभु जब कृष्ण का विरह का अनुभव करते गंभीरा में जगन्नाथपुरी, उनको सांत्वना देने के लिए कौन है, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों सांत्वना दे रहे थे, कोई रो रहा है कोई सांत्वना देने के लिए है। लेकिन वंशीधर ठाकुर हैं इधर, विष्णुप्रिया देवी है, उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। कौन दे सकता है? हु कैन डू दैट? ऐसा खाली एक सेंटेंस लिखा हो, हु कैन डू दैट, कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। महाप्रभु के विरह में अनेकों अनेकों भजनों को उन्होंने रचना किया वंशीधर ठाकुर। तो ये उनका विशेषता है, वेरी स्पेशल थिंग। तो उन्होंने कहा कि केशव भारती को, उन्होंने कहा एक भजन में, केशव भारती कितना कठोर हृदय वाला है, वाला है, कितने दुष्ट है, जरा दया नामक चीज़ नहीं उनके हृदय में, जिन्होंने महाप्रभु को संन्यास दिया। तो ऐसे बहुत, और कभी भी वो महाप्रभु से मिलने के लिए ही नेवर वेंट। विष्णुप्रिया देवी के साथ में उनका सेवा करते हुए वंशीधर ठाकुर रह गए। ऐसा उनके बारे में थोड़ा सा परिचय है, मुझे इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा इतना उनके बारे में जानता नहीं। और है श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित तो पूरा उड़ीसा में जो भी आज वैष्णव कल्चर दिखाई पड़ रहा है उड़िया में, उड़ीसा में कोई भी गांव में जाइए, वो महाप्रभु को जितना जानते हैं कि नहीं जानते वो मालूम, लेकिन श्यामानंद पंडित को तो ज़रूर जानते हैं। हाँ, जैसे पूरा विश्व में कृष्ण भक्ति अगर अमेरिका में कुछ है वो प्रभुपाद की वजह से, और उसको कोई दो राय नहीं है उसमें, प्रभुपाद की वजह से कृष्ण भक्ति दिखाई पड़ता है उधर। उड़िया में कृष्ण भक्ति अगर कभी दिखाई पड़ रहा है वो केवल उसका श्रेय जाता है उड़ीसा में श्यामानंद पंडित का। श्यामानंद पंडित के अनेकों अनेक लीलाएँ हैं, लेकिन उनका जो कृपा प्राप्त हुआ वो अतुलनीय है। श्यामानंद पंडित वो बचपन से ही बड़े विद्वान थे। वैसे उनका जन्म होने से पहले उनके माता पिता का चार बच्चे सब मर गए, तब उनका जन्म हुआ, उनका नाम रखा दुखी। वैसे बहुत दुखी थे, अगर ये भी हमको दुख ना पहुंचाए उसके नाम ही दुखी रख देते हैं, उसका नाम रख दिया दुखी, सब लोग दुखी दुखी बोलते थे उसको। तो लेकिन बड़े विद्वान, तब उनको जब उनके अंदर ही विद्वत्ता, उनकी जो वैष्णवता देख के, तब उनको गुरु को स्वीकार करना था। उनके पिता ने कहा इससे गुरु, इनसे गुरु करो, इनको गुरु करो, उन्होंने कहा नहीं, मेरा गुरु तो हृदय चैतन्य है। तो वो पिताजी ने पूछा कैसे जाओगे, बोला कि बस उड़ीसा से जाएंगे लोग गंगा में नहाने, यानी बंगाल जाते हैं, उनके साथ में चले जाऊंगा। तो उनके साथ में निकल पड़े श्यामानंद पंडित, यानी उनका नाम दुखी था। तो जैसे वो निकल पड़े, अंबिका कालना पहुँचे, तो अंबिका कालना में उधर आप सब जानते हैं, उधर गौरीदास पंडित हृदय चैतन्य का बड़े अद्भुत लीलाएँ हुए। तो वैसे जो बंगाल के भक्त हैं उसको वो लीलाओं को ज़्यादा अच्छा वर्णन कर सकते हैं। तो हृदय चैतन्य वो बड़े विचित्र है, उनका चैतन्य महाप्रभु हृदय में पहुंच गए कि ये स्टैंडर्ड हार्ड हो, तब से उनका नाम बड़ा हृदय चैतन्य, तब से उनको सब लोग मानने लगे। तो उनका और एक विचित्र स्वभाव, तो उन्हें दीक्षा दिया, उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास, तुम्हारा नाम दुखी भी रखो और साथ से दुखी कृष्णदास। तब उनकी आज्ञा के अनुसार हृदय चैतन्य ने कहा चाहो वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी के पास जाके शिक्षा ग्रहण करो। तो गए जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण, जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जीव गोस्वामी के साथ में और दो थे, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। लेकिन उस समय जीव गोस्वामी पास बाद के सब आए थे, उस समय उनका नाम था दुखी कृष्णदास। जीव गोस्वामी पास ने कहा ठीक है, तुम्हें रास्म स्थली जो है निधिवन में उधर रोज उनको जाके झाड़ू मारो। रोज उनका झाड़ू मारने का सेवा था, बड़े नम्रता के साथ हमेशा झाड़ू मारने के समय कृष्ण राधा कृष्ण लीला को स्मरण करते हुए उनका सेवा चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ, निधिवन सेवा कुंज एक ही जगह था, तो उस समय झाड़ू मारते मारते क्या हुआ, एक दिन उनको एक नूपुर मिला, राधारानी का जो लेफ्ट लेग का नूपुर था। तो नूपुर को लेके सोचा अरे किसी का होगा, जिसका होगा मैं उसी को दूंगा करके उन्होंने अपने गले में उसको लगा दिया। पहले अपने माता पे रखा और गले में रखा। तो बाद में विशाखा देवी आके पूछी वो इधर एक नूपुर मिला क्या आपको, हाँ मिला। तो ये किसका है, तो नहीं कि बाजू में गाँव वाली हैं उनका है, तो उनको मैं उनकी मित्र हूँ, उनको दे दीजिए, सखी हूँ, दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि जिसका उसको आके लेने दो। तब राधा रानी आई, तब उनको राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, प्रसन्न होके राधा रानी का दिव्य स्वरूप को देखे दुखी कृष्णदास एकदम बिल्कुल भावीभोर हो गए। विशाखा देवी लेके गई राधा कुंड में, उनको डुबाया, डुबा के जब बाहर उनका स्त्री का स्वरूप मिला। तब राधा रानी ने क्या किया, उनको अपने नूपुर से एक तिलक लगाया, बाद में वापस उनका यथारूप में आ गए और जीव गोस्वामीपाद के पास गए तो जीव गोस्वामीपाद ने तिलक को देख के एकदम बिल्कुल हैरान हो गए, इतना प्रज्वलित हो रहा है क्या है। तब उन्होंने पूरा स्टोरी बताया, तब इतना बात फैल गया वृंदावन में, राधारानी स्वयं आके इनको दीक्षा दिया, उनका नाम बदली कर दिया श्यामानंद पंडित करके। और ये भी कहा जाता है राधारानी ने अपने हृदय से निकाल के श्याम सुंदर विग्रहों को भी दिया उनको पूजा करने के लिए। तो ऐसे बहुत लंबा स्टोरी है कैसे हुआ वो हुआ और क्या क्या संवाद हुआ, लेकिन वो सब संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो खबर मिला कहाँ हृदय चैतन्य को कि उनको अपना तिलक बदली कर दिया और नाम भी बदली कर दिया, किसी और से दीक्षा ले लिया। तब गुस्से से वृंदावन आए, बहुत गुस्सा करने लगे। तो मालूम पड़ा किससे दीक्षा मिला। तो फिर भी उनको लग नहीं रहा था मेरा निश्चय, तो मैंने द्वारा दिया गया नाम बदली कर दिया, तो मेरे तिलक दिया वो दूसरा तिलक धारण कर रहे हो। तब राधारायण उनके सपने में आके कहने लगे मैंने दीक्षा की, तुम्हारा क्या जाता है, आएगी इनिशिएशन में डायरेक्टली दिया है। तब तुरंत अगले दिन शांत हो गया और निकल गया। तो बंगाल में आए थे सेवा करने के लिए, उनके जो पार्षद है गौर पार्षद है उन सबका सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके आदेश के अनुसार माँ जीव गोस्वामी और अन्य भक्तों के आदेश के अनुसार उड़ीसा में बहुत समस्या चल रही है, कोई वैष्णव का प्रचार नहीं हो रहा है, अब जाइए करके उड़ीसा भेजा गया था। उड़िया में गाँव से गाँव जाते गाँव गाँव जाते हुए अलग अलग जगह उन्होंने मंदिरों को स्थापना किया, राधा गोविंद जी का मंदिर भी स्थापना किया, अलग अलग जगह स्थापना किया। अभी उड़ीसा में कोई भी गांव में जाएंगे कुछ ना कुछ लीला रहेगा श्यामानंद पंडित के विषय में, ऐसा कोई स्टैंडर्ड लीला ही नहीं है उनका, क्योंकि उड़ीसा के भक्तों से आप मिलेंगे उड़िया के भक्तों को, श्यामानंद प्रभु ने किया, श्यामानंद प्रभु ने किया, श्यामानंद प्रभु ने किया, हर गाँव में अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलता है, क्योंकि गाँव में ऐसा ऐसा प्रचार किया हर जगह उनका कीर्तन चलता था। तो ऐसा हुआ एक बार ये मुसलमान सैनिक लोग आए उनको कीर्तन बंद कराने के लिए, सब लोग घेर लिए, इतना कीर्तन चल रहा है कोई उसको रोका नहीं, वो चल रहा है कीर्तन चल ही रहा है। तो अचानक क्या हुआ, सारे मुसलमानों को धाड़ी रहता है, कुछ लोगों को मूछ भी रहता है, सब जल गया। तो सब लोग भागे प्रणाम करके। ऐसे 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 कुछ छोटे छोटे जो लीला है उनके विषय में बहुत कहा गया है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ भक्तों के मुख से सुनने को मिलता है। ये अंशीवदन श्यामानंद ठाकुर उनका ये लीला है। थोड़ा सा हनुमान के विषय में चर्चा करेंगे, हनुमान जी कौन है। हनुमान जी जो है रुद्रांश है और साथ साथ में वायु के पुत्र है, पवन पुत्र बोलते हैं लेकिन एक्चुअली रुद्रांश है, रुद्र और मतलब पार्वती और शिव, पार्वती और शिव जी रमण कर रहे थे कैलाश में। जब पार्वती शिव पार्वती रमण कर रहे थे उनके पास ऐसी सिद्धियां होती है, कभी कभी अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ, शिव और पार्वती एक शिव जी ने बंदर का रूप धारण किया, ऐसे रमण करते हुए क्या हुआ उस समय, तो उन्होंने पार्वती को अपना वीर प्रदान किया। तो पार्वती वो बोले गए हमारा पुत्र एक बंदर होगा, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तब पवन जी ने क्या किया, वो जो शिव जी का शक्ति है वो लेके विहरण करते क्या करे। तो उधर अंजना देवी इंतजार कर रही थी, अंजना देवी के गर्भ पे प्रदान किया, तो इसलिए उनका नाम पड़ा आंजनेया, अंजन सुतोयम, अंजना के पुत्र होने के उनके आंजनेय कहा जाता है। और भी अनेकों नाम है और रुद्र के अंश है, रुद्रांश है, तो इसलिए हनुमान जी शिव जी का अंश के रूप में भी है और वायु का भी अंश उनके रूप में है। और उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा, उनका प्रसिद्ध नाम हनुमान है, मान के ऊपर हानि हुआ, क्योंकि बचपन में अंजना देवी ने कहा कि बेटा फल क्या होता है, मतलब जो लाल दिखता है वो फल है, वो खा लेना तुम। हनुमान ने देखा सूर्य को देखा, लाल दिख रहा है बहुत अच्छा फल है, बड़ा फल है, चलो जाता हूँ। तो सीधा जाके हनुमान जी वो सूर्य को ऑलमोस्ट आधा खा लिए थे। तो सब लोगों ने हैरान होकर देवता लोगों को कंप्लेंट किया, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, तो इंद्र ने देखा हनुमान को, तो हनुमान के ऊपर उन वज्र फेंका, जैसे वज्र फेंका तो क्या हुआ, वज्र फेंकने से मर जाना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा सा हानि हुआ, किसके ऊपर, मांग के ऊपर हानि हुआ, थोड़ा सा फूल गया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा है क्या कर रहे हो तुम, तो ब्रह्मा जी का आदेश सुन के हनुमान जी सूर्य को छोड़ दिए थे, नहीं तो सूर्य को खा जाते हनुमान जी। फल सब इतने शक्तिशाली है, इज सो पावरफुल, क्योंकि रुद्रांश है, रुद्र जो है सूर्य से बड़े हैं, टाइम डिपार्टमेंट इज मोर पावरफुल, प्रलय को कराने वाले, सूर्य को तो ऐसे ही खा सकते, कुछ भी कर सकते, पूरा पूरा जगत को हजम कर सकते, उस पर क्या, व्हाट इज सो बिग थिंग फॉर हनुमान, सूर्य को खा जाना। तो हनुमान का विशेषता, इट इज सच ए पावरफुल पर्सन। हनुमान जी का एक विशेष कांड है जिसका नाम है सुंदरा कांड, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड में से एक सबसे महत्वपूर्ण कांड, 2 है बालकांड है और सुंदरा कांड है, क्योंकि बालकांड और सुंदरा कांड 2 गुरु प्रदान कांड है। बालकांड को बालकांड इसलिए बोला जाता है क्योंकि रामचंद्र की बाल लीलाएं इसकी वजह से नहीं, क्योंकि विश्वामित्र की वजह से उसको बालकांड पड़ा, क्योंकि गुरु का एक और एक नाम है बाला, क्योंकि गुरु का स्वभाव बालक जैसा रहता है। गुरु का बालक जैसा स्वभाव क्यों रहता है, बालक जो है कितने बड़े परिवार में क्यों ना हो, लेकिन जब वो बालक जो, उसको मालूम नहीं रहता मैं बड़ा परिवार का हूँ, लेकिन अन्य बच्चों के साथ ऐसे ही घूमता रहता है, उसको बड़े परिवार में रहने का वो अहंकार नहीं रहता है। दूसरा क्या रहता है, बालक को उसका कोई चिंता नहीं रहता, कल क्या होने वाला, मुझे वो करना ये करना, कोई चिंता नहीं रहता, एकदम बिल्कुल फ्री रहता है, क्योंकि कृष्ण के ऊपर जो सरेंडर रहता है वो, कोई चिंता नहीं रहता, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, कृष्ण है। तो बालक का स्वभाव, इससे गुरु का 2 स्वभाव होने, ये बालक का होने की वजह से, इसलिए वो विश्वामित्र की वजह से उनका नाम पड़ा बालकांड। गुरु प्रधान कांड और एक है वह सुंदरा कांड, इसलिए गुरु को सुंदर भी कहा गया है, गुरु सुंदर होना चाहिए। सुंदर मतलब क्या है, शारीरिक तरीके से सुंदर, वैसे हनुमान जी शारीरिक तरीके से सुंदर भी थे, सब कुछ सारे लक्षण थे, शारीरिक तरीके से सुंदर ही नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति जो भी स्वीकार करता है वो सुंदर है, यानी जितना कृष्ण भक्ति है उतना उनके अंदर सुंदरता है। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए पड़ा, वो सीता की जी की वजह से नहीं है, हनुमान की वजह से। तो हनुमान के विषय में कहा गया है कि रामायण में हनुमान का प्रणाम मंत्र है, ये जो रामायण जो है वो महामाला, वो माला के बराबर है, और ये माला जो धारण करता है, रत्नों की माला जब धारण करता है कोई, तो उसमें जो बीच में जो लॉकेट होता है ना, वो हनुमान जी है। वो हनुमान जी है। हनुमान जी का प्राकट्य रामलीला में कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है, एग्जैक्टली इन द मिडल। जैसे बालकांड हुआ, बाद में अयोध्या कांड हुआ, बाद में अरण्य कांड हुआ, किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदरा कांड, उसके बाद युद्ध कांड, उसके बाद आधा रामायण पूरा डेडिकेटेड किसके लिए है, वो हनुमान जी के लिए है। जैसे राम का मुलाकात हनुमान से हुआ, उससे लेके पूरा रामलीला सब समाप्त होने के, उत्तराकांड में भी हर एक लीला में हनुमान जी सेंटर है। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी वो ऐसे महान व्यक्ति है, भक्त है, जो केवल लोगों का दुख कोई हरने वाला नहीं, भगवान के जो दुख है, भगवान से ऐसे आत्मा राम है, और भगवान कृष्ण जो है और रामचंद्र जी है वो अपने आप में आनंद में रहते हैं, पूर्ण आनंद है, लेकिन फिर भी जब जीवों को देखते हैं, बद्ध जीवों को देखते हैं, उनको बड़ा दुख का अनुभव होता है, दे बिकम वेरी सैड। तो भगवान के जो दुख को शांत करने की क्षमता रखने वाले गुरु, ये गुरु की क्षमता है, हनुमान जी क्षमता है। और वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम ऐसे सुनना कि जीवों को भगवान से मिलाते हैं, हनुमान जी ऐसे गुरु हैं, वास्तविक गुरु है जो भगवान को जीव से मिलाया। हनुमान जी चाहे तो सीता जी को लेके आ सकते थे, आके राम से मिला सकते थे, नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसको चर्चा नहीं करेंगे। बात यह है हनुमान जी ने क्या किया, राम को सीता से मिलाया, विश्वामित्र ने क्या किया, राम को सीता से मिलाया। अस्ते बद्ध जीव को भगवान से कैसे मिला सकते, कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान को बद्ध जी से मिलाना, ये गुरु का विशिष्टता, विशेष कार्य है, ये सुंदरा कांड का मेन प्रसंग है, मेन थिंग। और जब भी हनुमान जी, जब भी वो असुरों को मारते थे वो 4 श्लोकों का उच्चारण करते थे, 4 श्लोक उच्चारण करते हैं, उसको जय मंत्र कहा गया है। मेरे पास वो 4 श्लोक नहीं है, लेकिन बात यह है उसके अंदर सबसे पहला हनुमान ने अपने आप परिचय अपने आप का परिचय दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ट कर्मणः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दासोहम मैं दास हूँ किसका, राम का, राम का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ राम। बार बार श्लोक को बोलते थे, मान लो 1000 असुर आए, ये श्लोक उच्चारण करते थे, उन सबको मार देते थे, बाद में और 500 आया है, फिर वापस उच्चारण करके मानते थे। इसलिए वैदिक सभ्यता में ये जो जय मंत्र जो उसको बोला जाता है, ये 4 श्लोक जो हनुमान ने उच्चारण किया, वो श्लोकों को उच्चारण करके ही कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता कोई काम के लिए। उनमें से एक श्लोक का एक लाइन बताया मैंने आपको कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः, रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, राम कौन है, अक्लिष्ट कर्म, उनका कोई काम जो है कोई कठिन काम नहीं होता, हर चीज आसानी से करते हैं, लेकिन मैं उनको करने नहीं दूंगा, इसका भाव ऐसा है, मैं उनका कार्य करूंगा, आई विल डू हिज वर्क। अक्लिष्ट कर्मणः मतलब कोई भी काम करना चाहते हैं हमको बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं, घर में एक छोटा सा नल खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए कितना समय लगता है कि कितना तकलीफ होता है। कोई भी काम आसान नहीं है इस संसार में, कोई भी चीज़ पत्थर को उठा के दूसरी जगह रखना बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन कोई भी काम हो कोई भी कार्य हो अक्लिष्ट, उसे कोई आसानी से लीला जैसा कर देते रामचंद्र, लेकिन मैं रामचंद्र को सुख प्रदान करूंगा, मैं काफ़ी हूँ, रामचंद्र को आने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, दास हूँ हम, मैं उनका दास हूँ। तो ये बड़े अद्भुत लीला है हनुमान जी का। और एक छोटा सा एक लीला बता दो हनुमान जी का, वो शायद आप सुने होंगे नहीं होंगे। तो हनुमान जी को उनकी माँ अंजना ने कहा था, देखो साधुओं का रक्षा करना, साधुओं को स्वागत करना, साधुओं से उनके पदधूलि जो है बड़ा पवित्र होता है। तब ऐसा उन्होंने बहुत सारे चीज़ सुनाए थे बचपन में, बहुत सारे कहानी सुनाया था हनुमान जी को। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी आ रहे थे, तो नारद जी को देख के हनुमान ने प्रणाम किया, बचपन की लीला हनुमान जी को प्रणाम किया, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए वहाँ। तो नारद जी ने उनको बैठाया और वीणा को बाजू में रखे, तो हनुमान ने क्या किया, तुरंत वीणा को चोरी करके वो भागने लगे। अभी देखो नारद जी अपना वीणा अपना जान के बराबर है, हनुमान जी आगे आगे भाग रहे और नारद जी पीछे पीछे भाग रहे। तो अपने घर में गए, तो नारद जी जो है उनके पीछे घर में गए, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, वो कमरे में भाग रहे, एक कमरे में भाग रहे, पूरा कोने कोने में भाग के। तो नारद जी बहुत परेशान हो गए, तो उनकी माँ ने कांचना ने कहा, हनुमान क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको, दो वापस दे दो, ये संतों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो हनुमान ने कहा आपने ही तो कहा उनका चरण धूलि जो घर में पड़ना चाहिए, वैसे निमंत्रण करने को तो आएंगे नहीं, आने वाले नहीं है। तो इनका ऐसे विचित्र लीला है। तो ऐसा हुआ, तो इसी वीणा के साथ तो ऐसे कीर्तन चल रहा था, सब फ्रेंड हो गए, हनुमान जी अभी कीर्तन करने लगे, इतना अच्छा मधुर कीर्तन करने लगे। तो क्या हुआ, नारद जी भी एकदम भाविभोर हो गए, नीरा वीणा को बाजू में रखे, पत्थर के ऊपर रखे। बाद में कीर्तन समाप्त हो गया, एकदम नारद जी बड़े बड़े आनंद से बहुत बहुत इतना अच्छा सुद्भुत कीर्तन किया। तो हनुमान जी ने आप भी करो, तो बाद में देखते हैं कि वीणा निकाल के ले रहे, वो वीणा आ ही नहीं रहा है क्योंकि पत्थर पिघल गया था और वीणा उसके अंदर फंस गया। अभी नारद जी बोलते क्या हो गया, हनुमान जी मुझे नहीं मालूम। नारद जी को पता लगा, उन्होंने जब गाया वो पत्थर भी पिघल गया तो वीणा फंस गया, बोले वापस गाओ, बोलते नहीं गाऊंगा, आप गाओ, आपकी बारी अभी। अरे परेशान करते, नारद जी ने कहा कुछ तो करो, गाओ, मैं गाऊंगा तो पिघलेगा नहीं, तुम गाओ अभी। क्योंकि रुद्रांश है, रुद्र से ही नारद जी ने वीणा प्राप्त किया था, रुद्र प्रयाग में वही लीला है। बड़े तपस्या किया नारद जी ने और शिव जी प्रकट होकर उनको वीणा दिया और संगीत का शिक्षा दिया। तो हनुमान जी को हम अनेक बड़े शक्तिशाली उसके रूप में जानते हैं, लेकिन संगीत में बड़े प्रवीण हैं, सो एक्सपर्ट इन म्यूजिक। वो फिर वापस गाने लगे, तब नारद जी पत्थर पिघला तो वीणा लेके वापस गए। ऐसे उनके अनेक लीला हैं, सो मेनी पास्ट टाइम्स, फुल रामायण, अनिलात्मजम नारायण रामायणम महामाला मणिम वंदे अनिलात्मजम। ये महामाला दो माला होती है ना इस प्रकार, जैसे देखिए ये बीच वाला रहता है, इसको जोड़ता है दो भावों को, इसलिए जो पहला भाग है और दूसरा भाग है रामायण का, उन दोनों का जोड़ने वाले हनुमान जी वो बीच में प्रकट होते हैं। वो बीच वाला जो लॉकेट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये हनुमान जी का आज प्राकट्य दिवस है, तो उसके विषय में भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। हरे कृष्ण। मंत्राश्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।